हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगला दिन शुरू हो चुका था। आज रौनक की हल्दी थी, जिसकी तैयारी नीचे लॉन में शुरू हो चुकी थी। हल्दी के बाद ही ब्रेकफास्ट किया जाना था, जिसकी व्यवस्था अंदर लॉबी में की गई थी। लड़के वाले से लेकर लड़की वाले तक सब तैयार हो रहे थे। आयुष्मान और प्रीति के कमरे में प्रीति और आयुष्मान ने मिलकर अर्श को नहला दिया था। प्रीति ने उसकी मालिश करने के बाद नहाना शुरू कर दिया था और आयुष्मान अपने नन्हे राजकुमार को तैयार करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही प्रीति नहाकर वापस कमरे में आई, उसके कानों में आयुष्मान की आवाज़ पड़ी। लो, मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया, और कोई आ गया मेरे लिए? प्रीति ने आवाज़ की दिशा में निगाहें दौड़ाई तो सामने ही कुछ कदमों की दूरी पर आयुष्मान अर्श को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। नन्हा अर्श उसके कंधे पर सिर रखे हुए था। नए नए कपड़े पहने थे उसने। मालिश करवाकर, काजल लगाकर, कंघी करके एकदम तैयार था वो, और बहुत प्यारा लग रहा था। दूध पिया हुआ था उसने, और नहाने व मालिश के बाद हमेशा की तरह उसे नींद आने लगी थी। प्रीति ने देखा कि जहां अर्श पूरा तैयार हो रखा था, वहीं आयुष्मान रात के कपड़े पहने खड़ा था। दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई थी, जिससे उसका आधा चेहरा छिप गया था। प्रीति ने उसकी बाबाजी जैसी दाढ़ी को देखा और मुंह बना लिया। अब उसे सुला दीजिए, नींद आ रही है उसे, और जाकर नहा लीजिए। पर उससे पहले चेहरे पर जो जंगल उगाया हुआ है ना आपने, उसे साफ कर लीजिएगा, वरना आपको जो ये नया नया बाबाजी बनने का शौक चढ़ा है ना, एक ही बार में मैं आपके सर से सारा भूत उतार दूंगी। प्रीति की शुरू की बात सुनकर आयुष्मान मुस्कुरा रहा था, पर उसके आगे की बात सुनकर आयुष्मान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, और उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए हैरानी से कहा, अभी दाढ़ी कहाँ बढ़ी है इतनी? पार्टी से पहले ही तो ट्रिम की थी। ट्रिम नहीं करनी है, साफ करनी है। किस करते हैं तो दाढ़ी चुभती है आपकी। प्रीति बुरा सा मुंह बनाकर आयुष्मान को देखने लगी। उसकी बात सुनकर आयुष्मान एक पल को स्तब्ध सा उसे देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने हमेशा से इतनी दाढ़ी रखी है, पूरी साफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। दाढ़ी से मचौर वाला लुक आता है। अब एक बच्चा है मेरा, तो थोड़ा मचौर तो लगना होगा ना मुझे, वरना अगर पूरा क्लीन शेव्ड हो गया तो मैं शादीशुदा और एक बच्चे का बाप लगने के बजाय कॉलेज गोइंग बॉय लगूंगा, और लड़कियां मेरे तरफ अट्रैक्ट होंगी, जिससे तुम्हें ही परेशानी होगी। इससे बेहतर है कि मैं जंगली ही बनकर रहूं, इसलिए अब तुम्हें ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले तो प्रीति आयुष्मान की बात सुनकर आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरती रही, फिर बुरा सा मुंह ऐंठते हुए बोली, 101 बहाने बना लिए ताकि दाढ़ी ना बनानी पड़े, पर एक बार भी सच नहीं कहा गया कि आप लड़के लोगों को लगता है कि बिना दाढ़ी मूछ के आप छक्के लगते हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी दाढ़ी मूछ से इतना प्यार होता है। प्रीति, आयुष्मान ने उसे टोकते हुए कुछ कहना चाहा, पर प्रीति ने उसे बोलने का मौका ना देते हुए उसकी बात काटते हुए कहा, क्या प्रीति कर रहे हैं, मैं आपसे डरती नहीं, इसलिए मैं तो सच कहूंगी, और सच्चाई यही है, इसलिए आप लड़के लोग दाढ़ी नहीं बनाते अपनी, पर मैं आपको बता दूं कि बिना दाढ़ी के आप बहुत क्यूट और हैंडसम लगते हैं, इसलिए आपको आज अपने इस जंगल को साफ करना ही होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली आपका। या तो आप खुद शेविंग कीजिए, वरना रात में जब आप सोएंगे तो मैं आपकी दाढ़ी मूछ सब साफ कर दूंगी। और अगर आपको लड़कियों का डर है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लड़कियों से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से कोई परेशानी नहीं। उनके अट्रैक्ट होने से वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस आपको देखकर अपनी आंखें ही सेक सकती हैं। आपको पाने के ख्वाब देखते हुए आंखें भरने से ज्यादा कुछ करने की तो औकात ही नहीं उनकी, क्योंकि आप पहले से बुक्ड हैं। अब आप पर चांस मारने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, और मुझे आप बिना दाढ़ी के ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए या तो इस दाढ़ी को साफ कर दीजिए, वरना मैं आपको ही साफ कर दूंगी। प्रीति ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे धमकी दी और अकड़ते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई। आयुष्मान स्तब्ध सा बस उसे देखता ही रह गया। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही, फिर दोबारा प्रीति की आवाज आयुष्मान के कानों में पड़ी, अब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं आप? सारा दिन क्या यूं ही खड़े रहेंगे? आपके दोस्त की हल्दी है, जाकर जल्दी से नहा कर आइए, और शेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आयुष्मान ने प्रीति की आवाज़ सुनकर पलट कर देखा तो प्रीति हाथ बांधे उसे ही घूर रही थी। आयुष्मान ने बेबसी से सर हिला दिया और अर्श को सुलाकर जैसे ही पलटा, प्रीति ने उसे कपड़े थमा दिए और आंखों से ही बाथरूम में जाने का इशारा कर दिया। आयुष्मान ने अपने शेविंग किट लिया और बाथरूम में चला गया। कॉलेज के बाद बेचारा कभी क्लीन शेव नहीं हुआ था, पर आज जाने प्रीति के सर पर कौन सी जिद सवार थी कि उसे क्लीन शेव करवा कर ही रहेगी, और आखिरकार उसकी जिद के आगे आयुष्मान को झुकना ही पड़ा। प्रीति अब बेफिक्र होकर मजे से तैयार होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सामने मानसी खड़ी थी। पीले रंग का सूट पहने एकदम तैयार हो रखी थी वो, और बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। भाभी, आप तैयार हो गई? मानसी ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिसे सुनकर प्रीति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बस बाल बनाने हैं, पर तुम्हारे भैया अभी तक नहाकर नहीं आए हैं। अर्शु तैयार हो गया? हाँ। तो आप मुझे अर्श को दे दीजिए, मम्मी बुला रही है, और आप दोनों भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। वो सो रहा है अभी, ज्यादा शोर वाली जगह पर मत लेकर जाना, वरना कच्ची नींद में जाग जाएगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। मानसी ने सहमति में सर हिला दिया। प्रीति ने अर्श को लाकर उसे दे दिया तो मानसी उसे लेकर चली गई। प्रीति वापस अंदर चली आई और अपने बालों में कंघी करने लगी। यहां प्रीति ने अपने बालों को कंघी करके उन्हें जुड़े में बांधा और वहां आयुष्मान ने बाथरूम से बाहर कदम रखा। प्रीति ने उत्सुकता में तुरंत ही पलट कर देखा। मस्टर्ड कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स, शर्ट की स्लीव को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। माथी पर भीगे बाल काली घटाओं जैसे लहरा रहे थे, जिन्हें वो हाथ में पकड़े छोटे तौलिए से पोंछते हुए आगे बढ़ रहा था। उस फिटिंग की शर्ट और जीन्स में उसकी पर्सनैलिटी उभर कर सामने आ रही थी। चेहरा एकदम क्लीन शेव था, बिल्कुल कॉलेज गोइंग बॉय लग रहा था वो इस वक्त। प्रीति की नज़र आयुष्मान पर पड़ी तो वो पलकें तक झपकना भूल गई और एकटक उसे देखती ही रह गई।